Thank you. सरस्वती दिवाय गए अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इसकॉन बीबीटी बिहार पौनराचार्य से मोस्ट मर्सिफुल एसी भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम निष्पाद परमहंस प्रकाचार्य कष्टोत्तर सदिवान गेश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किरणी गोस्वामी महाराज की। नामाचार्य शिलहरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की। प्रेम से गोचर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। प्रेम से गोचर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा गिरिधारी गौर गोपीनाचाम कुंड राधा गिरि गोवर्धन की। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। All glories to the humble devotees, all glories to the humble devotees, all glories to the humble devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Sri Prabhupada, Savior of the whole world, the most merciful, Esi Bhakti Vedanta Swami, Sri Prabhupada Ji. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद अध्याय 8 श्लोक श्रृंखला 9। इति
तं चिन्तयन् श्रुत्वा देवस्य दारिकावाच अपि हंस गत असंका तरहि तर न अनह अनह अनाय भवेत्। इति सत्यन्तयं श्रुत्वा देवस्य दारितावाच अपि हन्ता गता शङ्का तर्हि तान्नान्यो भवेत् इति सञ्चन्तयान् श्रुत्वा देवस्य दारितावाच अपि हन्ता गतिशङ्का तर्हि तान्नो अन्यो भवेत् इति सञ्चन्तयान् श्रुत्वा देवस्य दारिकावाच अपि हन्ता गता शङ्का तर्हि तान्नान्यो भवेत् अन्यो भवे।
वैष्णवी
शब्द इस प्रकार है, इति इस तरह संचिन्तयन् विचार करते हुए श्रुत्वा यह समाचार सुनकर देवक्या देवकी की दारिका वचः पुत्री की वाणी अपि यत् अपि थी हंतागत आशंकः हो सकता है कंस इस बालक को मार डालने का प्रयत्न करे तरही इसलिए तर वह घटना न हमारे लिए अन्यः अन्यः भवे बहुत अच्छा न हो। एक श्लोक इससे पहले आठवां नंबर श्लोक एक बार में पढ़ लेता हूं। कंसः पापमति सत्यं तव च अनुकर्तुं भुवे देवक्या अष्टमो गर्भो नास्त्री वदितं अर्हति इति संचिन्तयन् श्रुत्वा देवक्या दारिका वचन अभिहंत गता शंका तरी तानो नो भवे। शब्द कंस राजा कंस पापमती अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण के पार्श्वी मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कंस बहुत कूटनीति होने के साथ ही अत्यंत पापी है, अतः देवकी की पुत्री योग माया से यह सुनने के बाद कि उसके मरने वाला उसे उसके मारने वाला बालक अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है और यह सुन चुकने पर कि देवकी के आत्वे गर्भ से पुत्री उत्पन्न नहीं हुई हो सकती और यह जानते हुए कि वसुदेव से आपकी मित्रता है, जब कंस यह सुनेगा कि यदुकुल की पुरोहित मेरे द्वारा संस्कार कराया गया है तो इन सब बातों से उसे निश्चित रूप से संदेह हो जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है, तब वह कृष्ण को मार डालने के उपाय करेगा और यह महान विपत्ति सिद्ध होगी। कंस जानता था कि योग माया आखिर कृष्ण तथा विष्णु की दासी है, अतः भले ही वह देवकी की पुत्री रूप से उत्पन्न हुई हो किंतु हो सकता है उसे यह तथ्य प्रकट करने के लिए मना किया गया हो। कंस का विचार बता रहे। कंस सोच रहा था कि देवी प्रकट हो गई और मुझे हिंट दे रही है कि आठवां बच्चा कहीं पे जन्म लिया, सावधान हो जाओ। तो ये कम से कम चार प्रोपद जी हम बता रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि देवी उनके ऊपर कृपा कर दिया, कम सोच रहे हैं। वस्तुतः ऐसा ही हुआ था। गर्ग मुनि ने बड़ी ही गंभीरता पूर्वक तर्क किया कि कृष्ण का संस्कार उनके द्वारा कराने से बहुत से संदेह उठ सकती है, जिससे कंस इस बालक को मार डालने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठा सकता है। कंस पहले से ही इस बालक को जान से मार डालने की के लिए कई असुर बेच चुका था, किंतु उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यदि गर्ग मुनि इस संस्कार कराते तो कंस के संदेह की पूरी तरह पुष्टि हो जाती और वह अधिक कड़क कदम उठाता। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह चेतावनी दी। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनो आवृतं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सगना रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां स्वजना ललिता शीर्षाकांतां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तत्र कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये प्रणमामि हरि प्रिये। नमो मावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरकृषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गर्गाचार्य महान पंडित है। गर्गाचार्य गर्ग मुनि या गर्ग ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज वृंदावन में गर्गाचार्य का आगमन से कृष्ण और बलराम दोनों को अति भय उत्पन्न हो गए। कृष्ण बलराम को भय, जो कृष्ण जिनसे स्वयं भय भयभीत होते भयभीत होने लगे। ये जो प्रसंग है इस अध्याय में, श्री विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर पहले श्लोक में कहते हैं कि ये घटना जो है ये त्रिनाभ का वध के पहले हुआ है, जब नंद महाराज ब्रज में है गर्गाचार्य का आगमन और वो बहुत प्रसन्न होते हैं। यानी कि ये प्रसंग जो है भगवान कृष्ण के दिव्य जन्म के बाद का है और नंद उत्सव के बाद का है, क्योंकि नंद उत्सव के तुरंत बाद नंदन महाराज चले मथुरा तो ये घटना पूतना वध और तृणावत वध या पूतना के उद्धार और तृणावत के उद्धार के बीच का है। कृष्ण और बलराम का भय यह है कि गर्गाचार्य आ गया, अभी माधुर्य लीला का आस्वादन कराना है, करना है। कृष्ण भगवद गीता में घोषित कर देते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं सबसे बड़ा भोक्ता हूं, सब चीज को मैं ही भोग करूंगा। अब मुझे इन भक्तों का संबंध के द्वारा जो सेवा का भोग मुझे करना है, मैं अखिल रसामृत मूर्ति हूं, रसराज हूं, रसिक शेखर हूं, मुझे इन भक्तों का वात्सल्य रस और साख्य रस और माधुर्य रस का आस्वादन कर, ये कहां पे आ गया बीच में? माधुर्य रस में ऐश्वर्य का कंकर आ गया, जैसे मीठे खीर में छोटे छोटे रेत आ जाते, तो मीठापन का आस्वादन होते होते दांतों में कंकर कहां से आ गया? इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का डर लग गया, अरे गर्गाचार्य आ गया। जैसे पूतना आए तो कृष्ण को पता लग गया, वो आंख बंद कर दिया, पर गर्गाचार्य आए तो कृष्ण और बलराम दोनों डर गए। छोटे से कृष्ण मां यशोदा के गोद में है, पर डर डर के वे अपने कमर को पीट करके अपना मुंह छुपाना चाहता था, अरे गर्गाचार्य को मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और बलराम जी रोहिणी की माता के गर्भ से चटपटा रहा है, तो मां यशोदा कृष्ण को रोहिणी के हाथ में दे रही है और रोहिणी माता बलराम जी को यशोदा के हाथ में दे, चटपटा रहे, बोल रहे नहीं हमें नहीं देखना, गर्गाचार्य हमें देख लेगा तो हमारा पोल खुल जाएगा। भय था, क्या पोल खुल जाएगा? कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनको डर था अगर ये पोल खुल जाएगा तो मां यशोदा रोज उनको अगरबत्ती दिखाएगी और थोड़ा सा फूल दिखाएगी और थोड़ा सा सूखा मिश्री खिलाएगी और माखन नहीं देगी, ताजा ताजा माखन नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को ताजा माखन खिलाया जाता है ताकि बच्चा पुष्ट हो जाए। अरे अरे ये गर्गाचार्य आ गया है, ये ऋषि है, मुनि है, सब कुछ जानता है, और मेरा फूल खोल देगा। तो कृष्ण बलराम डर रहे थे, नहीं 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 नहीं, इनका भय, ये भय हमारा भय जैसा नहीं। हमारा भय क्या होता है कि मेरा अस्तित्व का नाश हो जाएगा, पर कृष्ण और बलराम जी का भय यह था, मैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहता हूं, दिव्य दिव्य है ये भय भी दिव्य है। भगवान का जन्म दिव्य है, उनके भय भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। तो कृष्ण बलराम डर रहे हैं, अपने आप को छुपाने जा रहे हैं, जैसे कि मानो कि इसके चोरी पकड़ा जाएगा, जैसे चोर होता है वो डर जाता है, चोरी पकड़ने से पहले डर जाते हैं। इस बात पर एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। एक व्यक्ति अपने पत्नी से कहा, अरे सब कुछ छुपा दो, टेबल को छुपा दो, फैन को छुपा दो, ये पेन को छुपा दो, ये नोटबुक को सबको छुपा दो। तो बोला क्या हो गया? बोला मेरा मित्र आ रहा है। अच्छा, लगता है तुम्हारा मित्र बहुत बड़ा चोर है। तो पतिदेव ने बोला, वो चोर नहीं, वो पहचान लेगा ये सब आइटम कहां से आया, ऑफिस से आया। तो वो डर गया था। इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम डर गए, भाई मेरी चोरी पकड़ा ना जाए कि मैं चुप से ब्रज में आनंद का लीला कर रहा हूं। गर्गाचार्य महान ऋषि है, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं, गर्ग संहिता इत्यादि, जिसे पढ़कर भक्त लोग, खास करके राधा रानी का जन्म का जो गुह्य तत्व है, जो अन्य वेदों में नहीं हमें मिलता है, बलराम जी के गुह्य लीला गर्ग संहिता में हमें मिलता है, अनेक अनेक कंस के अनेक अनेक जन्मों का लीला हमें गर्ग संहिता में मिलता है। इतना बड़ा पंडित है, तो कृष्ण जान गया कि ये मेरा पोल खोल देगा और चुप चुप के ये दोनों ये कर रहे। तो इस प्रकार से माता यशोदा को बड़ा आनंद का अनुभव हो रहा है। ओ कृष्ण, ये घटना नामकरण का है, और विशेष रूप में वसुदेव के द्वारा इनको भेजा गया था, वसुदेव जी पहले तो नंद महाराज को कहा जाओ जाओ जल्दी जाओ। नंद महाराज गए, छह दिन के पुतना का वध का घटना देखे। उसके ठीक बाद वसुदेव ने सोचा मेरा बेटा जन्म लिया है, बलराम जी भी है, कृष्ण और बलराम दोनों नंद महाराज के घर में पल रहे हैं। ज्यादा करके विधि विधान का अगर कड़ाई से पालन किया जाता है, बच्चे का जन्म होते ही 10 दिन या 11वें दिन के बाद नामकरण किया जाता है। और नामकरण के अनेक अनेक विधि है, ये संस्कार है, गर्भ संस्कार, ये संस्कार, नाम संस्कार, अंतिम संस्कार तक 10 मुख्य मुख्य संस्कार होते हैं। तो ये नाम संस्कार भी एक संस्कार है और इसके अनेक विधि है, 10 दिन के बाद किया जाता है ज्यादा करके। और बच्चे का तिथि देखा जाता है और उनके पिता के नाम से उनका नाम जोड़ा जाता है और नाम ज्यादा करके छोटा दिया जाता है, जैसे कृष्ण विष्णु ऐसे नाम दिया जाता है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं दिया जाता है क्योंकि बुलाने में थोड़ा कठिनाई होगा। तो वसुदेव ने कहा गर्गाचार्य से जाओ जाओ, पर यहाँ पे गर्गाचार्य आ भी रहे हैं और उन्हें पता है कि कृष्ण कौन है और बलराम कौन है, और बलराम जी को भी पता है कृष्ण के ऊपर, ये दोनों बच्चे अभी छुप रहे हैं। और नंद महाराज महाऋषि का आगमन हुआ तो विधि विधान के अनुसार उनका ऐसा उचित आदर किया, कहा अहो भाग्य कि हमारे घर में ऐसे आपके ब्राह्मण वैष्णव आए, आपके चरण हमारे घर में आए, घर पवित्र हो गया, हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया, आसन दिए, पाद प्रक्षालन किए और अनेक बातें किए, बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं गर्गाचार्य की, कहते हैं कि आप ऋषि हो, मुनि हो, आचार्य हो, आप ऐसा कृपा कीजिए हमारे बच्चे का नामकरण कीजिए, ये दोनों बच्चे कितने दिनों से मेरे घर में हैं, बड़े प्यारे हैं, तो आप कृपा करके नामकरण करना। गर्गाचार्य यही कार्य करने के लिए आ रहे हैं पर कहते हैं यदु नाम अहम आचार्य, मैं यदु वंश के आचार्य हूं, क्या भी सर्वदा सर्वदा इस भूमंडल में इसका छाती है। गर्गाचार्य बड़ा पंडित है तो कहते हैं कि हमें सावधान होना, सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम, अगर इस बच्चे का नामकरण किया जाएगा तो कंस को पता लग जाएगा ये गर्गाचार्य यहां क्या कर रहा है और वो तुरंत अब इस विषय के ऊपर चिंता करने लगे। क्यों करेगा नंद महाराज कहते हैं, क्यों करेगा कंस, कंस ऐसा क्यों करेगा? तो इस श्लोक में कहते कंस पापमति सत्यम, कंस जो है बहुत बड़ा पापी है। नंद महाराज कहते हैं नहीं नहीं, कंस को अगर पता भी चल गया कोई बात नहीं, कंस को अगर पता भी चल गया कोई बात नहीं, आखिर कंस वैष्णव ब्राह्मणों का आदर तो करता है। तब गर्गाचार्य कहते हैं कंस पापमति सत्यम, कंस जो है बड़ा पाप है, पापी है, वो ये सब नहीं देखेगा, आपको भी मारेगा, मुझे भी मारेगा, ये बच्चे को भी मारेगा, आप नहीं जानते किस प्रकार से सत्यम आपके जो मित्र है, भाई है वसुदेव, उन्हें उनके पत्नी उन्हें अपनी बहन को मारने का प्रयास किया, वो कुछ नहीं देखेगा, पापमति वो बहुत बड़ा पापी है, वो ये सब नहीं देखेगा, अपना जान बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैं वैष्णव ब्राह्मण हूं, आपको भी नहीं छोड़ेगा। ओ तब अनंक दुंदुबे, आपका जो बच्चा है, आपका जो मित्र है अनंक दुंदुबी वसुदेव, उनके साथ क्या किया आपको पता नहीं, देव क्या अष्ट गर्भो ना स्त्री भवितम अर्हति, और इसका शक जो है अभी बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आठवां गर्भ जो है हम सब जानते हैं कि वो एक देवी है, एक स्त्री है, पर कंस का जो शक है कि आत्मा गर्भ स्त्री है, वो जान जाएगा कि वो स्त्री नहीं है, वास्तव में वो पुरुष है और कहीं छुप गया। ऐसे कैसे? तो कहते हैं इति संचिंतयन श्रुत्वा, उसने सुना, किससे सुना? देवक्या दारिका वच, उसने अपने देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुई थी, लड़की उत्पन्न हुई थी, बच्ची जन्म ली थी, वो कौन है? वो वास्तव में कंस सोच रहा है कि वो मेरी पूजनीय इष्ट कुल देवी है, और ये देवी कंस के इस कारागार में इसलिए आई, कंस ऐसे सोच रहा है कि मुझे थोड़ा सा जानकारी देना चाहती, हिंट देना चाहती है। ओ तू मेरा उपासक है तो जान लो। वैसे तो देवी कहती है मोर कंस, तो जिसे मारना चाहते हो वो कहीं और जन्म लिया। तो कंस क्या सोच रहे हैं कि देवी कह रही कि मूर्ख तू नहीं जानते हो कि आठवा गर्भ कहीं जन्म लिया और यहां पे मथुरा में क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढो उसे और मारने का तैयारी करो। पर कहां पे वो बच्चा है? वो देवी इसलिए नहीं बताई क्योंकि इसे पता है जितने भी देवी है, जितने भी देवता है, वो सब नारायण विष्णु के अनुयायी है, दास दासी है। इसलिए बड़े टेक्निक से मुझे बता दिया कि अभी ये बच्चा जन्म लिया है, पर कहां जन्म लिया वो बताया नहीं, क्योंकि विष्णु या नारायण उनके केस पर हावी हो सकते हैं। तो नहीं क्यों बताया कि कृष्ण कहां जन्म लिया, इसलिए हिंट दे दिया। तो कंस ये सोच रहा है कि देवी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा कर दिया, मुझे थोड़ा सा सूचना दे दिया, और उस वक्त से कंस कृष्ण को मारने का तैयारी कर रहा है। अपि हंता गत शंका तरीतानो अन्यो भवेत्। इस प्रकार से हमको सावधान होना जाना चाहिए। ये नामकरण का संस्कार अगर हम कर देंगे तो पूरे ब्रज में ब्रजवासी आएंगे और कंस को पता लग जाएगा, ब्रजवासी करेंगे आज नंद के लाला दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया उनका नामकरण हो रहा है, और इस प्रकार से ख्याति बढ़ जाएगा और कंस के गुप्तचर जो घूम रहे हैं वो खबर पहुंचाएगा और पूछा किसने नामकरण कराया, गंगाचार्य। ओ तो फिर कंस को पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा देवकी का है और वसुदेव का है, और पूरा मारने का तैयारी करेगा। इसलिए हमें बहुत सावधान हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से गंगाचार्य का यहाँ पे नंद महाराज से यह निवेदन है कि ये जो उत्सव है नामकरण का, इसे बहुत ही गुप्त रूप में करना चाहिए। मैं जरूर करूंगा पर सबके सामने नहीं करूंगा। आगे जाकर गंगाचार्य नंद महाराज खुद कहेंगे ठीक है, आप जैसे संत, आप जैसे वैष्णव का आना ये वास्तव में हमारा भाग्य है, और ये जो मौका है हमें प्राप्त हुआ है, हम आपसे छोड़ना नहीं चाहते। हमने बच्चे का नामकरण कराया नहीं, बच्चे का जन्म लेकर, बलराम जी का जन्म लेकर इतने इतने दिन हो गए, लगभग महीने बीत गए, और ये बच्चा लगभग 9 या 10 दिन का हो गया। देखो ना, आप प्लीज नामकरण कराइए। और यहाँ पे कृष्ण और बलराम बोल रहे प्लीज, डर रहे वो लोग, कांप रहे हैं, अरे गंगाचार्य जाता क्यों नहीं है, ये माधुर्य रस में ऐश्वर्य डालकर पूरा खेल बिगाड़ देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे गंगाचार्य जो है आते तो हैं, और वसुदेव से कहने के कहने से आते हैं, और आगे जाके गंगाचार्य और नंद महाराज धीरे से गौशाला में जाते हैं, क्योंकि गौशाला एक पवित्र स्थान है, उसमें गोबर और गोमूत्र पहले से ही पड़ा हुआ है। गौशाला नंद महल से थोड़ा दूर है और यहाँ पे यशोदा मैया कृष्ण को गोद में लेके कह रहे कि आज इनका नामकरण होगा और कृष्ण वहां पे यशोदा मैया के गोद में छटपटा रहे। माँ सोच रही क्या हो गया इस बच्चे को, और बलराम जी रोहिणी माता के गर्भ गोद में छटपटा रहे, तो रोहिणी माता क्या हो गया इस बच्चे लोग को, तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। नंद महाराज और गर्गाचार्य आगे आगे निकल गए, नामकरण यज्ञ का तैयारी चालू है। आपस में दोनों माताएं बात कर रहे हैं, अरे सुना है कि ये जो गर्गाचार्य है, गर्ग मुनि है, एक गर्ग ऋषि बड़ा पंडित है। तो रोहिणी माता का हाँ मैंने भी सुनी कि ये बहुत बड़ा पंडित है। अरे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है, हाँ ये सच बात है। अच्छा तो क्यों नहीं हमें तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्यों ना हम थोड़ा सा अपने गुरु का ज्ञान को थोड़ा जांच करते हैं। तो बोलते मतलब, तो कहा कि ऐसा करते हैं कि बलराम जी को मैं अपने गोद में लेती हूँ। यशोदा मैया ने कहा अच्छा ठीक है, और कृष्ण को आप रख लेना, फिर देखते हैं कि गर्गाचार्य पहचानेगा कि रोहिणी का पुत्र कौन है और यशोदा मैया का पुत्र कौन है। तो देखिए यशोदा मैया जो कि कृष्ण की माँ है और नंद महाराज की पत्नी है, पर है गोपी ब्रज की, और उम्र भी जीवन के चतुर्थ अवस्था में यानी कि वृद्ध अवस्था में कृष्ण प्राप्त हुए, फिर भी देखिए इनके अंदर गुरु को परखने का या उनको जांचने का यहां पे मस्ती बोलते हैं इसको सुजी। तो रोहिणी माता भी कहा ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को बोला चलो हम अपने गुरु का ज्ञान को परखते हैं, देखते हैं हमारा गुरु कितना ज्ञानी है। तो समझिए जिसका माँ इतना मस्ती वाली होगी तो बच्चा क्यों नहीं मस्ती वाला होगा। तो बोलते हैं ना बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप, तो ये माँ ऐसी होगी तो बच्चा क्यों नहीं इतना मस्ती वाला होगा। तो ये कृष्ण और यशोदा इसी प्रकार से पूरे ब्रज को आनंद देते हैं। कृष्ण बलराम भयभीत है क्योंकि यशोदा मैया सोच रही कौन है मेरा बच्चा इतना क्यों तड़पता है, क्योंकि यशोदा को ये पता नहीं है ये कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है। वो तो सोच रही ये मेरा लाला है, बलराम जी मेरा बेटा है, उनके लिए भगवान कौन है, नारायण है, उनके कुल देवी देवता जो है वो नरसिंह भगवान है। आज भी गोकुल में जाएंगे तो बोलेंगे ये 84 कंबा का दर्शन करो और नंद महाराज का नरसिंह भगवान का दर्शन करो, ये रास्ता है जहां से वसुदेव आए थे, चोर गली कहते हैं, मां पुतना का वध हुआ, ये सब बताएंगे और नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे। माँ यशोदा यही रोज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करती है, नारायण से प्रार्थना कि मेरा इस बेटे को रक्षा करो। तिलक लगाएंगे, लगाते केशवाय नारायण वक्त समय, इस प्रकार से 13 तिलक लगा के सोचते कि अब नारायण मेरा बच्चे का रक्षा करेगा। उनको नहीं पता कि कृष्ण ईश्वर परमेश्वर है। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि इन लीलाओं का स्मरण करते हुए अपने दामोदर अष्टकम में गाते हैं, इति दृक्षा लीला बिर आनंद कुंडे स्वागो शामे मान जान थम आज्ञा पायां थम तदिये सीताग्नेषु भक्ति जितात्वम् पुनः प्रेम तत्तम स्वतंत्रति वंदे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लशतकुण्डलं गोकुले व्रजमान। इस प्रकार से कृष्ण बलराम यशोदा मैया को बड़ा आनंद के कुंड में अपना लीला के द्वारा बहुत आनंद दिला रहे सारे ब्रजवासियों को। तो ये सुंदर लीला का श्रवण करना चाहिए। इतना आनंद भगवान कृष्ण के लीला में है, इसे श्रवण करके आनंद का अनुभूति होती है। इसे श्रवण करते 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 हमारे कान जो है अमृत का प्याला बन जाता है। ऐसा अमृत का प्याला जिसमें अमृत अमृत आते रहेगा पर वो प्याला भरते नहीं रहेगा। ऐसा इस मधुर मधुर लीला को श्रवण करते हैं तो हमारा कान अमृत का प्याला बन जाता है, जिस अमृत का प्याला में कोई कोई इसका जो वॉल्यूम है उसका जो साइज है वो असीम होता है और उसमें जितना अमृत आए फिर भी वो प्याला भरता नहीं है। तो ऐसे मधुर लीला का श्रवण करना चाहिए और ऐसे मधुर लीला में जो भाग लेते हैं उनका क्या कहना, कितना आनंद यशोदा मैया को अनुभव हो रही है, सारे ब्रजवासियों को अनुभव हो रही है। वास्तव में यही जीवन है, जीवन आनंद और आनंद के लिए है और ये आनंद कृष्ण के लीला में ऐसे प्रवेश होने से मिलता है श्रवण के माध्यम से। और वास्तव में श्रवण करते करते इस लीला में प्रवेश करने के लिए ये मनुष्य देह मिला है और ये जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। ये जीवन जो हम जी रहे हैं वो कैसा जीवन है, थोड़ा सुख थोड़ा दुख 50-50, ये सब भगवास है, थोड़ा कट्टा थोड़ा मीठा, नॉनसेंस। किसको कट्टा चाहिए, सबको मीठा चाहिए। थोड़ा सुख थोड़ा दुख ये सब गलत है। जीव भगवान का अंश है और वो आनंद का अनुभव करने के लिए और ये आनंद भगवान के इस लीलाओं में प्रवेश करने से मिलता है श्रवण, और बाद में श्रवण करके लीला में व्यक्तिगत रूप में प्रवेश करने के लिए मिला है। हमें तड़पना चाहिए, क्यों 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 नहीं इस लीला में हमें प्रवेश होने का मौका मिल रहा है। कृष्ण आगे जाकर और लीला करेंगे। एक दिन चोरी करने गए थे कृष्ण, तो एक बच्चा सो रहा था, तो कृष्ण धीरे से गया और उसके कान में चिमटी लगाया, तो चिमटी लगाया कान में चिमटी लगाया तो बच्चा उठ गया। फिर बाद में कृष्ण गए तो बच्चा रोया। तो संतगण कहते हैं, आचार्य कहते हैं, बच्चा इसलिए नहीं रोया कि कृष्ण ने चिमटी मारा। कृष्ण जैसे ही चिमटी मारे तो बच्चे कृष्ण का सुंदर रूप को देखकर हंसने लगा। तब कृष्ण कान में गा, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, अब मैं माखन चोरी का लीला जो मैं गोलोक में नहीं किया और किसी अवतार में नहीं किया वो करने जा रहा हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस लीला में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो क्योंकि आप बहुत छोटे हो। तो बच्चा रोने लगा, करके उसका रोना इसलिए नहीं कि चिमटी मारा, उसका रोना इसलिए था कि अब मुझे इस लीला में भाग नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हम सबको रोना चाहिए कि मुझे क्यों कृष्ण की लीला में भाग लेने का मौका प्राप्त हो रहा है। हमें तड़पना चाहिए, ऐसे तड़पना चाहिए जैसे मछली जो है पानी से जब बाहर आती है तो तड़पती है, पानी कब मिलेगा पानी कब मिलेगा। उसी प्रकार से हम सबको अपने भक्ति के जीवन में अग्रसर होने के लिए अब तड़पना चाहिए कि कृष्ण के लीला में मैं प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहे हूं। अब तड़पना चाहिए, तड़पना तब हमारा जीवन वास्तव में जीवन होगा। इति दृक्षा लीला भी आनंद कुंडे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। अगर ये तड़प नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि हम सच में कृष्ण भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहे। तड़पना चाहिए, क्यों कृष्ण हमारे लीला हमें लीला में नहीं ले रहे। तड़पना चाहिए जैसे मछली तड़प रही, जैसे चातक पक्षी उस बादल के लिए इंतजार करती है वर्षा ऋतु में, उस बूंद के लिए कि वो बूंद मिल जाए, तब तक वो अपना चोंच खोल के और कोई पानी नहीं पीते। इसी प्रकार से हमें तरफ में और कुछ नहीं चाहिए। कोई जिस प्रकार से मछली के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, मछली के सामने अच्छा सोफा लेकर आओ तो कहेगी नहीं चाहिए ये सोफा, एयर कंडीशन लेके आओ नहीं चाहिए, अच्छा मकान लेके आओ नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसी प्रकार से और कुछ भी हमें मिले, हमें तड़पना चाहिए नहीं चाहिए, हमें केवल कृष्ण का लीला चाहिए, कृष्ण का कथा चाहिए। इस प्रकार से कृष्ण बलराम अब गौशाला की ओर जाएंगे, पर गर्गाचार्य गर्गाचार्य है और इन दोनों का बदमाशी तुरंत पकड़ लेंगे और ये दोनों शर्मिंदा हो जाएंगे। कौन? यशोदा और रोहिणी। आगे नामकरण का लीला आएगा, श्रवण कीजिए, जीवन को सार्थक कीजिए। हरे कृष्ण। एक आध प्रश्न किसी का तो तो सरल लीला कथा है, इसमें कोई प्रश्न का गुंजाइश नहीं, फिर भी ओके। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, गर्गाचार्य की, यशोदा मैया की, नंद महाराज की, रोहिणी माता की, बलराम जी की, गौर हरि प्रेमानंद जी। Thank you.